होठों पर डार्क लिपस्टिक और चेहरे पर एक अलग एटीट्यूड लिए वो लड़की स्काई के पास आती है और अपना एक हाथ उसके गले में डालते हुए कहती है, मैंने सुना है किसी ने आज अपने नाम को फिर से प्रूव किया है, तो सोचा क्यों ना उसकी इस चीज़ पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया जाए। स्काई की चेहरे की मुस्कान और गहरी हो जाती है और वो लिसा की कमर को पकड़कर उसे अपने और करीब कर लेता है। वो लिसा के बालों को अपनी उंगलियों पर लपेटते हुए कहता है, मुझे तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत है जेनी। जेनी के चेहरे पर भी डेविल स्माइल आ जाती है और वो नामे सर हिलाती है। वो स्काई के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कदा के साथ उसे देखती है और फिर अपनी कैटवॉक दिखाते हुए बेडरूम में चली जाती है। संदीप अपना चेहरा नीचे कर लेता है और जॉन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो अपनी ड्रिंक को उठाते हुए कहता है, इंजॉय। स्काई अपनी सिगरेट को ऐश ट्रे में बुझाता हुआ कमरे में पहुंचता है और कमरे में जाकर ही उसकी नज़र बेड पर बैठी हुई जेनी पर पड़ती है, जो बहुत ही वाहियात तरीके से बेड पर बैठी हुई थी, जिसे देखकर किसी का भी चेहरा शर्म से भर जाए। लेकिन स्काई के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। इंडिया, जयपुर यूनिवर्सिटी। एक लड़का अपनी बाइक से तेजी से यूनिवर्सिटी के कैंपस में जा रहा था। उसकी नज़र हवा में उड़ रहे उस दुपट्टे पर थी जो अभी अभी हवा में लहरा रहा था। वो लड़का चलती हुई बाइक के ऊपर खड़ा हो गया। बाइक चल रही थी और वो लड़का उसके ऊपर दोनों हाथ हवा में लहराते हुए खड़ा होता है। उसकी पहुंच बस उस दुपट्टे पर थी। जैसे ही उस लड़के ने देखा कि वो दुपट्टा हवा में थोड़ा सा नीचे आ रहा है, अगले ही पल वो उस दुपट्टे को पकड़ लेता है। उसके ऐसा करते ही वहां पर जोरों से तालियां बजने लगती है और सब उस लड़के का नाम जोरों से चिल्लाने लगते हैं, अनंत, अनंत। अनंत चलती हुई बाइक से नीचे कूद जाता है और कॉलेज के सभी लोग उसके पास आ जाते हैं। वो अनंत को देखकर ताली बजाने लगते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो रोते हुए अनंत को देखती है। अनंत वो दुपट्टा उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, बेटी चाहे राजा की हो या किसी ड्राइवर की, इज्जत सबकी बराबर होती है। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है। उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उस दुपट्टे को लेते हुए अनंत को देखकर कहती है, थैंक यू भैया। अनंत मुस्कुराते हुए उस लड़की के सर पर हाथ रखता है और कहता है, आज के बाद ध्यान रखना, कई बार कपड़े हमारा कैरेक्टर बता देते हैं। वो लड़की मुस्कुराती है और हाँ में सर हिलाती है। तभी वहां पर एक लड़का आता है जो अनंत से कहता है, अनंत तेरी समाज सेवा के चक्कर में हम लेट हो गए हैं, जल्दी चल, प्रिंसिपल सर हमें बुला रहे हैं। अनंत उस लड़के के कंधे पर हाथ रखता है और उसे देखकर कहता है, कमॉन कबीर, तू इसे समाज सेवा कैसे कह सकता है यार। राह चलती लड़की अगर भाई बोल दे तो इसका मतलब ये है कि वो हमारी बहन हुई है और हमारी बहन की हिफाजत करना हमारे लिए कब से समाज सेवा हो गया है यार, वो तो हमारा फर्ज होता है ना। कबीर अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है और कहता है, हाँ हाँ ठीक है ज्ञानी बाबा, अब अपना ज्ञान मुझे देने से बेहतर ये है कि प्रिंसिपल सर से चलकर बात कर लो। अनंत मुस्कुरा देता है और कबीर के साथ प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। सिंघल महल। इस महल की खूबसूरती और शानो शौकत में आज भी कोई बदलाव नहीं आया था। आज भी इस महल में लोगों को उतनी ही इज्जत और सम्मान के साथ देखा जाता है और यहाँ का रुतबा आज भी वैसा ही बरकरार है जैसा 26 साल पहले हुआ करता था। और इसकी वजह ये है कि आज भी यहाँ के राजा साहब आस्तिक रायचंद है। हमेशा की तरह आस्तिक सीढ़ियों से नीचे उतर कर आता है। वो डाइनिंग टेबल की हेड ऑफ द फैमिली वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। उम्र का तकाजा आस्तिक के चेहरे पर दिखने लगा था, लेकिन चेहरे पर रुबाब अभी वैसा ही था। पृथ्वी का अब अपना हॉस्पिटल सिंघल में ही था और जानवी ने अपना पब्लिशिंग हाउस शुरू कर लिया था। वो दोनों एक साथ अपने काम को आगे बढ़ा रहे थे। जानवी घर और अपना पब्लिशिंग हाउस दोनों एक साथ बहुत अच्छे से संभालती थी। आस्तिक, पृथ्वी या फिर किसी को भी उसके पब्लिशिंग हाउस से कोई परेशानी नहीं थी। यहाँ तक कि आस्तिक ने घर की सारी जिम्मेदारियां जानवी को दे रखी थी, क्योंकि उसे पता है कि जानवी से बेहतर इस घर को ना तो आस्तिक संभाल सकता है और ना ही पृथ्वी संभाल सकता है। ऐसी ही उम्मीद ये लोग किसी और से कर सकते थे, लेकिन फिलहाल इस समय के लिए ये उम्मीद करना बेकार था, क्योंकि वो शख्स इस घर से बहुत दूर है और जानवी ने भी इस घर को सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ही समझा है। पृथ्वी आस्तिक के साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठता है और कहता है, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, आस्तिक ने भी अपनी प्लेट में पोहा रखते हुए कहा। तभी जानवी किचन से अपने हाथ में एक बाउल लेते हुए आती है और उस टेबल पर रखते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आस्तिक के हाथ रुक जाते हैं और वो हैरानी से जानवी को देखकर कहता है, क्या बात है जानवी, परेशान नजर आ रही हो। जानवी अपनी निराशा छुपाते हुए कहती है, परेशान कैसे ना रहूं भाई साहब, अगले महीने तक अमृता की शादी है और अब तक अमृता अपने कॉलेज से वापस नहीं आई है। यहाँ पर सारी तैयारियां शुरू होने वाली है और अमृता कह रही है कि वो फाइनल एग्जाम दिए बिना वापस नहीं आएगी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उसके बाद जानवी आस्तिक से कहती है, भाई साहब आप बात करिए ना, आप तो जानते ही हैं अमृता आपकी बात कभी नहीं टाएगी, उसे कहेंगे तो वो जल्दी वापस आ जाएगी। आस्तिक मुस्कुराने लगता है और कहता है, जानवी तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर कितना परेशान हो जाती हो, और तुम्हें किसने कहा है कि मैं अमृता से ये कहूंगा कि वो अपनी फाइनल एग्जाम छोड़कर यहाँ पर आए। अरे
मैं तो चाहता हूँ कि वो अपनी एग्जाम कंप्लीट करे और उसके बाद सिंघल वापस आए। वैसे भी एक बार सिंघल आ जाएगी तो उसके बाद तो उसे डोली में बैठकर विदाई लेनी है। उससे पहले जी लेने तो उसे अपनी जिंदगी। आस्तिक ने कह तो दिया था लेकिन जानवी के चेहरे पर परेशानी अभी भी थी। आस्तिक कसके अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में उससे जरूर बात करूंगा, लेकिन वापस आकर। पृथ्वी हैरानी से आस्तिक को देखकर कहने लगा, आप जयपुर जा रहे हैं अरुणिमा से मिलने के लिए ना? हाँ, मैं जयपुर जा रहा हूँ। अनंत और अरुणिमा से मिले हुए बहुत समय हो गया है। एक महीने से मैं उनसे मिलने ही नहीं गया हूँ, इसीलिए सोच रहा हूँ कि जाकर मिल लेता हूँ। और फिर अरुणिमा को अमृता की शादी के बारे में भी तो बताना है, जानवी मायूसी के साथ कहती है। भाई साहब, ये वनवास और कब तक चलेगा?